नमस्कार भारत, तारीख 29 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। जयललिता के निधन के बाद उनकी करीबी रही शशिकला आज संभाल सकती हैं AIADMK महासचिव का पदभार।
I expect the ADMK General Council to adopt the resolution one condoling Jayalalitha, extolling her wishes and all that. Second one, you know, asked me to take over
as General. BBC हिंदी की वर्षांत पेशकश में मिलिए सितार सम्राट पंडित रविशंकर से। कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन थोड़ा सा ठहरने के बाद पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अपूर्व कृष्ण से। तमिलनाडु में सत्ताधारी AIADMK की उच्च स्तरीय इकाई जनरल काउंसिल में आज पार्टी सुप्रीमो जयललिता का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। समझा जा रहा है कि इस बैठक में जयललिता की करीबी मित्र VK शशिकला को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस पद के लिए वो अकेली दावेदार होंगी और इसलिए बिना किसी चुनाव के उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के उस भाषण को पक्षपातपूर्ण बताते हुए निंदा की है जिसमें उन्होंने इसराइल की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि कैरी केवल इसराइली बस्तियों की बात करते रहे मगर फिलिस्तीनियों के उकसाऊ रवैये और हिंसा की कोई आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा फिलिस्तीनियों का इसराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार करना है। मैं चाहता हूं कि फिलिस्तीनी नौजवान हमारे बच्चों की तरह ही शांति का पाठ पढ़ें, मगर वे शांति नहीं जानते। फिलिस्तीनी प्रशासन उन्हें आतंकवादी बनने और इसराइली लोगों को मारने की शिक्षा देता है। इसराइली प्रधानमंत्री के शब्द। इससे पहले अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइली बस्तियों को अवैध ठहराने के प्रस्ताव को समर्थन देने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दो राष्ट्रों के विकल्प को गंभीर नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए किया गया। अगर एक ही राष्ट्र चुना गया तो इसराइल या तो यहूदी होगा या फिर लोकतांत्रिक देश। वो दोनों नहीं हो सकता और वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। और उधर फिलिस्तीनी एक राष्ट्र के समाधान से कभी भी अपने देश में अपनी विशाल क्षमता को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। जॉन कैरी के शब्द। जर्मन मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि बर्लिन में हुए हमले के दौरान ट्यूनिशियाई व्यक्ति अनीस आमरी ने जिस ट्रक को भीड़ में घुसाया था उसका ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम शुरू में ही कुछ दुकानों से टकराने के बाद ऑन हो गया, जिससे और लोगों की जान बच गई। इस हमले में 11 लोग मारे गए थे। ट्रक के पोलिश ड्राइवर को की पहले ही हत्या कर दी गई थी। इस बीच जर्मनी के अभियोजकों ने बर्लिन में क्रिसमस बाजार पर हुए ट्रक हमले के संबंध में 42 साल के एक ट्यूनिशियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उसका नंबर अनीस आमरी के फोन पर पाया गया था। सीरिया में विद्रोही गुटों का कहना है कि वे तुर्की के साथ एक संघर्ष विराम समझौते के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मगर अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि यह कोशिश कामयाब होगी या नहीं। एक प्रमुख विद्रोही गुट ने कहा है कि मतभेद का एक मुद्दा दमिश्क के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके को लेकर है, जिसे संधि में शामिल करने पर सहमति नहीं बन पा रही। अनिल बैजल को दिल्ली का अगला उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 70 वर्षीय बैजल के नाम पर मुहर लगा दी है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले सप्ताह दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने वाले पति की हत्या करने की दोषी पाई गई 69 वर्षीय एक महिला को माफी दे दी है। इस मुकदमे से फ्रांस में घरेलू दुर्व्यवहार का एक मुद्दा चर्चा में आया था। जैकलिन सॉवेज को अपने बेटे के फांसी लगाने के एक दिन बाद अपने पति को गोली मार देने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से वो 3 साल की सजा काट चुकी हैं। मुकदमे के दौरान महिला ने दावा किया था कि वो लगभग 50 सालों तक अपने पति के हाथों यौन दुर्व्यवहार और हिंसा झेलती रही थी। उसकी 3 बेटियों ने भी अपने पिता के खिलाफ गवाही दी थी। जाम्बिया में कीड़ों के हमले को रोकने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। ये कीड़े देश के 10 में से 6 प्रांतों में फसलें नष्ट कर चुके हैं। सेना के विमान कीटनाशकों को ले जा रहे हैं ताकि सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में इनका छिड़काव किया जा सके। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद उनकी करीबी रहीं शशिकला आज AIADMK महासचिव का पद संभाल सकती हैं। शशिकला को चिनम्मा भी बुलाया जाता है। हालांकि कई पार्टी नेताओं की अपील के बावजूद अभी तक उन्होंने इस बात के संकेत नहीं दिए हैं कि वो पद स्वीकार करेंगी कि नहीं। विश्लेषक इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि शशिकला के समर्थक उन्हें कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, क्योंकि जयललिता के पास भी यही दो महत्वपूर्ण पद थे। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट सुनिए।
ये आवाजें वही हैं जो कल शाम अन्ना डीएम के दफ्तर के सामने सुनने को मिली। कल पार्टी के कार्यकर्ता लिंगेश्वरन तिलयन और दूसरे वकीलों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। वजह यह थी कि तिलयन अपनी पत्नी शशिकला पुष्पा का महासचिव पद के लिए नामांकन पत्र पार्टी के अधिकारियों को देना चाहते थे, लेकिन उनको कार्यकर्ताओं ने इतना पीटा कि तिलयन की शर्ट पर भी खून के बड़े धब्बे पड़ गए थे। शशिकला पुष्पा राज्यसभा के सदस्य हैं और ये पार्टी कार्यकर्ता इसलिए पीट रहे थे क्योंकि ये लोग वीके शशिकला का विरोध कर रहे हैं। अन्ना डीएमके के प्रवक्ता सिया सरस्वती ने कहा,
Actually, she is not a member of ADMK at all, first of all. Another thing is, she has become a mayor only because of her honorable amma.
शशिकला पुष्पा पार्टी की सदस्यता खो चुकी है। उन्होंने अम्मा के खिलाफ बेफजूल इल्जाम लगाए थे। उन्होंने अम्मा पर राज्यसभा में इल्जाम लगाया था कि अम्मा ने उनकी पिटाई की थी। ये लोग सिर्फ प्रचार के लिए अब ऐसा कदम उठा रहे हैं। ये थे सिया सरस्वती के शब्द। एक बात तो स्पष्ट है कि पार्टी के कार्यकर्ता शशिकला को महासचिव की जिम्मेदारी देने से खुश नहीं है। विश्लेषक कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता या तो इस बात से समझौता कर लेंगे या नहीं तो चुप रह जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या शशिकला महासचिव के अलावा मुख्यमंत्री भी बनना चाहेंगी जैसे जयललिता थी। हमने यह सवाल चेन्नई के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर एन सत्यमूर्ति से पूछा। उन्होंने कहा,
लास्ट इवनिंग वेटरन पार्टी लीडर एंड सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम द डेज ऑफ एनडीए,
हालांकि ये सही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान उनके लिए महासचिव बनना होगा, जब तक वो पन्नीरसेल्वम खुद अपना पद छोड़कर उन्हें दे दें। लेकिन इसमें थोड़े दिक्कतें भी हैं क्योंकि एक मुख्यमंत्री को विधायक दल चुनती है। ये थे एन सत्यमूर्ति के शब्द। एक और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एस मुरारी भी कहते हैं कि इस सोच पर कोई आश्चर्य की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा,
आई एक्सपेक्ट द एडीएमके जनरल काउंसिल टू अडॉप्ट द रेजोल्यूशन 1 कंडोलिंग जयललिता एक्सटॉलिंग हर वर्थेस एंड ऑल दैट।
देखिए, अन्ना डीएमके में कुछ भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े नेता को खोया है। पार्टी एक तूफान में फंसी हुई नजर आती है, तो इसमें कोई आश्चर्य करने की जरूरत ही नहीं है कि वो शशिकला को दोनों ही पद दे दें। लेकिन हर एक को पता है कि वो वोट लाने वाली नेता नहीं बन सकती है। ये थे एस मुरारी के शब्द। बहरहाल शशिकला को मुख्यमंत्री बनने में एक और रुकावट है। शशिकला आय से अधिक संपत्ति केस में दूसरी अभियुक्त हैं और सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अपना निर्णय अभी तक नहीं दिया है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तो जैसा कि आपने सुना, शशिकला आज AIADMK महासचिव का पदभार संभाल सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले नोटबंदी के खिलाफ थे, लेकिन अब वो अपने बयान से पलटना चाहते हैं। हालांकि बिहार में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल ने नोटबंदी के खिलाफ धरना दिया था, लेकिन इसमें महागठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने हिस्सा नहीं लिया। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने RJD के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से संपर्क साधा और उनसे बात की।
पार्टियां नहीं, एक आदमी इसमें अलग है। जैसे जदयू एक पार्टी है, उसमें तो शरद यादव वहाँ लड़िए रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ, लेकिन नीतीश उधर से पहले सपोर्ट बोल दिए, लेकिन उनको यू टर्न होने में कठिनाई हो रही है, तो वो अब समीक्षा कहते हैं कि 50 दिनों में हम समीक्षा करेंगे कि नोटबंदी से अभी भी लोगों को तकलीफ है, तब तो हम आंदोलन में आएंगे।
लेकिन उनका अलग रुख क्या है?
सपोर्ट कर दिए, अब वो उलटना चाहते हैं।
ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो उलटना चाहते हैं?
इसलिए कि उनकी पार्टी का बयान आया है कि 50, उन्होंने भी बयान किया है कि हमको लोगों से ब्रीफिंग आ रही है कि नोटबंदी से तकलीफ है और उम्मीद किए थे मुख्य प्रधानमंत्री के बयान पर कि 50 दिनों में सब समस्या जो संकट आया खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 50 दिन जब पूरा हो रहा है तब हम समीक्षा करेंगे। तो हमको बुझाता है से अब समीक्षा करके वो तब आवेंगे, नोटबंदी के खिलाफ खड़ा होंगे।
राज्य में जो दोनों की गठबंधन सरकार है, राजद और जेडीयू की, तो क्या वो क्या राजद को राजद से अपना अलग पक्ष रखना चाह रहे थे इस मुद्दे पर?
हाँ, वो गलत उनका था। महागठबंधन के नेता होकर के उनको नरेंद्र मोदी अथवा नोटबंदी के सपोर्ट में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनसे हमको लगता है कि बुला गया तो अब बदलना चाहते हैं।
लेकिन ये बताइए कि जो राजद के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, अब वो कह रहे हैं कि वो पीएम कोई भी चौराहा चुन ले जिसमें जो है जनता नोटबंदी को लेकर उनको दंडित कर सके, ये किस तरह का बयान है?
जैसे अपने ना नरेंद्र मोदी बयान किए थे कि 50 दिन में नहीं सुधर जाएगा तो कोई चौक चौराहा चुन करके तो बोले थे जो हमको जूता से मारिए, ये बोले थे।
तो ये बताइए कि अब राजद क्या मन बना रही है, क्योंकि अब आखिरी तारीख आ रही है।
हम एगो विस्तार रैली करेंगे गांधी मैदान में, नोटबंदी के खिलाफ है, उसमें सब पार्टी को सेकुलर पार्टियों को न्योता जाएगा, सब लोग है, ममता दीदी से बात हुई है और सब लोग आवेगा, इसमें जदयू भी हमको बुझाता है आ जाएगा।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद। कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। अपूर्व, ये बताइए कि अखबार आज के क्या कह रहे हैं?
आज सभी बड़े अखबारों में पुराने नोटों की चर्चा है, और खबर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च के बाद अगर ये जो पुराने नोट अगर पाए जाते हैं तो एक अध्यादेश पारित हुआ है जिसके अनुसार अगर उससे ज्यादा नोट पाए जाते हैं तो वो एक अपराध
है। 10,000 से ज्यादा अगर आपके पास मूल्य के नोट हैं तो कानूनन जुर्म है वो।
हाँ, वो कानूनन जुर्म हो जाएगा और सजा का प्रावधान है। सजा ऐसे भी है कि 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है और जेल की भी चर्चा है, हालांकि उस पर अध्यादेश में कोई सहमति नहीं बन पाई है। और नोटबंदी के अलावा मोहनलाल, हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर, बल्कि सभी अखबारों में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर जो मुलायम सिंह यादव परिवार है उनके बीच शक्ति संघर्ष की खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि मुलायम सिंह यादव ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए अखिलेश यादव की भेजी उम्मीदवारों की लिस्ट को खारिज कर दिया और साथ ही ये भी कह डाला कि पार्टी इस बार बिना किसी मुख्यमंत्री के दावेदार के चुनाव में उतरेगी। और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है और संदीप और सुरभि शुक्ला, ये दो नेता हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया है जिन्हें उनके चाचा शिवपाल यादव का करीबी माना जाता
है। अतीक अहमद को भी टिकट मिला है। और अच्छा अपूर्व, ये बड़ी रोचक स्थिति उत्तर प्रदेश की बनती दिख रही है जहां पर चाचा भतीजा और इनके बीच में जो लड़ाई चल रही है वो हमेशा लगातार पिछले कई महीनों से आ रही है। आगे क्या कह रहे हैं अखबार?
चुनाव तो अभी अगले साल होंगे और तब तक ये रस्साकशी
चलती
खबरें आती ही रहेंगी मोहनलाल। हाँ, और इंडियन एक्सप्रेस में खबर है सुरेश कलमाडी के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आजीवन अध्यक्ष बनने की। अखबार कहता है कि उनका कार्यकाल, ये जो आजीवन अध्यक्ष बनने का कार्यकाल था, वो 24 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गया जब उन्होंने खुद ही इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। और मोहनलाल, एक और खबर जो मैं अहम मानता हूँ वो खबर है, हिंदू में छपी है कि केंद्र सरकार ने स्कूली बसों में इंटरनेट नहीं चलने देने वाले जैमर लगाने का सुझाव दिया है, जिससे कि इन बसों में बच्चों के साथ सफर कर रहे व्यक्ति मोबाइल फोन जैसे डिवाइस पर अश्लील पोर्न सामग्रियों का इस्तेमाल ना कर सके। सरकार ने इस संबंध में एक याचिका आई थी, उसका जवाब देते हुए ये सुझाव दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व कृष्ण अखबारों की समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 7,430, 9,560, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। बीबीसी की वर्षांत पेशकश में अब तक आपने सुना जोहरा सहगल, राजेंद्र यादव और बाबा नागार्जुन को। आज सुनिए भारत के मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर पर हमारी विशेष प्रस्तुति। भारत रत्न से सम्मानित पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में मशहूर किया और दुनिया के कोने कोने में अपने हजारों प्रशंसक बनाए थे। कई साल पहले हमारी पूर्व सहयोगी रेणु अगाल ने पंडित रविशंकर का इंटरव्यू किया था, उसी पर आधारित सुनिए विनीत खरे की प्रस्तुति।
ये ये भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पंडित रविशंकर के सितार से निकला संगीत है। संगीत वाद्य के रूप में सितार भारत में मध्यकाल से ही मौजूद था, लेकिन 20वीं सदी में पंडित रविशंकर और विलायत खां साहब ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। पंडित रविशंकर का पूरा नाम रविंद्र शंकर चौधरी था और वो बनारस में एक बंगाली परिवार में साल 1920 में पैदा हुए थे। अपने सात भाइयों में सबसे छोटे रविशंकर को संगीत का शुरुआती संस्कार अपने बड़े भाई उदय शंकर से मिला था, जो एक मशहूर नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। दस साल की उम्र में वो उदय शंकर की मंडली के साथ पहली बार यूरोप यात्रा पर गए थे। उदय शंकर के साथ उन्होंने नृत्य और विविध भारतीय वाद्य यंत्रों को बजाने की शुरुआती तालीम हासिल की। उनके साथ विदेश यात्राओं के दौरान रविशंकर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, जैज और सिनेमा के संपर्क में आए और बेहद प्रभावित हुए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर पश्चिम की यात्राएं मुश्किल हो गईं, तो रविशंकर ने उस्ताद अलाउद्दीन खां के यहाँ मेहर जाकर विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। साल 1944 में संगीत का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वो मुंबई जाकर इप्टा के लिए म्यूजिक कंपोज करने लगे। आने वाले सालों में उन्होंने गोदान और अनुराधा जैसी फिल्मों के लिए संगीत भी दिया। साठ के दशक में पंडित रविशंकर ने एक बार फिर विदेशों में कॉन्सर्ट्स करने शुरू किए। वो ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका गए। हालांकि इन कार्यक्रमों में शुरुआत में श्रोता कम ही होते थे। इन यात्राओं में पंडित जी श्रोताओं के सामने शास्त्रीय संगीत पेश करने के साथ साथ उन्हें संगीत की बारीकियों से एक शिक्षक की तरह अवगत भी करवाते थे। बीबीसी के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र किया था।
मुझे ऑलमोस्ट 47 ईयर्स लगा जब से मैं जाना शुरू किया विदेश में, और उनको बिल्कुल पहले पता नहीं था अपने शास्त्रीय भारतीय संगीत के बारे में, लेकिन मैं हर कोने दुनिया के हर कोने में जा कर बजा कर, सिर्फ बजाना नहीं, उनको समझाना थ्रू लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन, थ्रू टेलीविज़न प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, साप्ताहिक, दैनिक इंटरव्यूज़ वगैरह और मास्टर क्लासेस, सब जगह मैंने किया। तो उससे मुझे पता लगा कि काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आपने जो पूछा कोई फ़र्क है कि नहीं श्रोता में, फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन ये गलत फहमी हमारे यहाँ हमेशा मैं देखता रहा कि लोग समझते हैं कि भारत में सभी हमारे शास्त्रीय संगीत समझते हैं, ये बात गलत है। हमारे यहाँ भी चंद शहर है जैसा कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, उधर दक्षिण में ज़्यादा हैं, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं, लेकिन उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत में बस चंद शहर में हमारे अच्छे श्रोता कुछ मिलते हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा कुछ सुनने के लोग आ रहे हैं, और लगता है कि शायद नंबर में पहले से बहुत ज़्यादा श्रोता बढ़ गए भारत।
पंडित जी ने एक अन्य विश्वविख्यात संगीतकार यहूदी मेनुहिन के साथ भी कॉन्सर्ट किया था, जिससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। लेकिन पंडित जी के संगीत को उस वक्त अभूतपूर्व ख्याति मिली जब मशहूर पॉप बैंड बीटल्स के गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन उनके शिष्य बन गए। वो पंडित रविशंकर से सितार सीखने के लिए भारत आए और कुछ समय उनके साथ रहे। दोनों ने एक साथ कई कॉन्सर्ट भी किए।
तो क्लासिकल अर्थ में जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े हॉल सारे दुनिया में, और उस समय हमारा सहयोग था सब क्लासिकल म्यूजिशियन से, यहूदी मेन्यूहिन हुए, जहाँ पे रामपाल हुए, रोस्टोपोविच वगैरह, जुबिन मेहता, इन लोग के साथ मैं काफ़ी सहयोग किया, उनको सिखाया, हमारा कंपोजिशन उन लोगों ने बजाया। लेकिन जब जॉर्ज हैरिसन 66 में हमारा शागिर्द हो गया, उसमें एक हलचल मच गई, दैट वाज दिस सेकंड पीरियड। और उस पीरियड में क्या हुआ, नए पीढ़ी के जितने लोग हैं, नए हिपीज लोग और सब फ्लावर चिल्ड्रन वगैरह, सब लोग एकाएक हमारे ऊपर उनका दृष्टि पड़ गई, लेकिन अच्छा ही हुआ। मैं कहता हूँ कि उसमें वो जब हमारे कॉन्सर्ट में आए, फिर उनका पता लगा कि हमारा संगीत में कितना शक्ति है, कितना आनंद भी है, कितना स्पिरिचुअल क्वालिटी है, जो वो ढूंढ रहे थे वो सब उनको मिला।
पंडित रविशंकर की संगीत यात्रा को सफल बनाने में उनको संगत देने वाले तबला वादकों का अहम योगदान रहा। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा साहब पंडित जी को तबले पर संगत दिया करते थे।
ये बात सच है कि वो हमारे एकम्पनिस्ट साहब में हमारा सहयोगिता कहिए, हमारे साथ टूर में हम ले जाते थे उनको हर जगह। सबसे ज़्यादा समय के अनुसार करीब 25 साल तो वो तो होता ही यार, वो इतना अच्छा कलाकार थे, हमारे भाई जैसे थे, और बहुत मैं उनको लेके सारा दुनिया में। लेकिन उसके पहले मैं चतुरलाल को पहले ले गया था, उसका भी बहुत नाम हुआ था, लेकिन एक दो टूर के बाद फिर हम कनाई दत्त बोल के एक था, उनको एक टूर में ले गया था, उनका भी बहुत नाम हुआ। तो अल्लाह रखा जी, क्योंकि हमारे साथ करीब करीब 25 साल टूर किए, उनका एक तो थे ही वो अद्भुत कलाकार, तबला वादक इतना ऊँचे दर्जे के, और मैं जितना हो सका उनको प्रोत्साहन दे के सब जगह ले जा के उनका बहुत नाम हुआ, और मैं ज़रूर मिस करता हूँ उनको।
20वीं सदी के उत्तरार्ध में पंडित रविशंकर ने सितार वादन को शोहरत की दुनिया में काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। भारत में उनसे पहले सितार वादक तो कई हुए, लेकिन पंडित जी की लोकप्रियता तक शायद ही कोई पहुंच सका। शायद यही वजह थी कि उनके समकालीन और प्रख्यात सितार वादक विलायत खान साहब ने एक बार कथित तौर पर यह कह दिया था कि उनका संगीत पंडित रविशंकर से ज्यादा श्रेष्ठ है। जब पंडित जी से इसके बारे में बीबीसी ने पूछा तो उनका कहना था,
मैं तो सबसे निकृष्ट हूँ, हमसे बहुत अच्छे अच्छे सितार वादक हैं, ये जिनको ख्याल, मैं कभी ये बोलने का चेष्टा भी नहीं किया कि मैं कितना अच्छा हूँ। अभी जो कुछ मैं सीखा बाबा अलाउद्दीन खां से, वो हमारे गुरु थे, सैनिया बीनकर घराना के जो ढंग है वो सीखा, और अपने क्या कहते हैं अपना नया सोच से मैं जो कुछ प्रतिष्ठा किया सितार में, जिनको पसंद है वो करते हैं। अब ये तो फालतू बात है, कौन ये टेनिस नहीं है कि नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री, कोई भी ऐसा कहे कि मैं अच्छा नहीं बजाता हूँ तो वो ठीक है, जैसा भी मैं बजाता हूँ मेरा लोग जैसा पसंद करते हैं वही मैं बड़ा समझता हूँ।
पंडित रविशंकर ने अपने गुरु अलाउद्दीन खां साहब की बेटी अन्नपूर्णा देवी से पहली शादी की थी, लेकिन उनके जीवन में और भी महिलाएं आईं। न्यूयॉर्क में एक कॉन्सर्ट के आयोजन से जुड़ी सू जोन्स के साथ संबंध से उन्हें एक बेटी पैदा हुई, जिसे दुनिया मशहूर सिंगर और अभिनेत्री नोरा जोन्स के नाम से जानती है। नोरा ने कई ग्रामी अवार्ड जीते हैं। पंडित जी ने 80 के दशक में एक भारतीय महिला सुकन्या राजन से शादी रचाई थी। इस शादी से साल 1981 में पंडित जी को एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने अनुष्का रखा। अनुष्का शंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं और कई बार ग्रामी अवार्ड के लिए नामित भी हो चुकी हैं। पिता पंडित रविशंकर अनुष्का की सफलता को लेकर बेहद खुश और आशंकित भी थे।
आशा तो बहुत बड़ी है, और क्योंकि यह कारण नहीं है कि सिर्फ वो मेरा बेटी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि वो असाधारण टैलेंटेड और इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि यह जो संयोग है कि हमारा सुपुत्री भी है और इतना टैलेंटेड है कि मैं उसको सिखा पाया। लेकिन ये विद्या जो है इसका तो कोई ख़त्म नहीं है, हमारा भारतीय संगीत का ये महत्व है। जो लोग समझते हैं हम सबसे बड़ा हैं, आई एम दी ग्रेटेस्ट, वो भला समझा करें, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि इसका कोई शेष नहीं है। जितना भी करें, हमारे बाबा आखिर तक, बाबा अलाउद्दीन मेरे गुरु आखिर तक यही बात कहते थे कि हमें अभी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है लेकिन अभी लगता है कितना दूर है। वो जो गोल जिसको कहते हैं, लेकिन वही चीज़ मैं भी महसूस करता हूँ। और मेरा बेटी का अभी 19 साल उम्र है लेकिन इतना नाम हो गया चारों तरफ और मीडिया इतना उसके पीछे पड़ गए, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि शायद ये क्या कहते हैं लक्ष्य न तो रास्ता से अलग ना हो जाए।
संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पंडित रविशंकर को देश की सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और पंडित जी ने रमन मैग्सेसे अवार्ड समेत कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे। लेकिन पुरस्कारों से ज्यादा खुशी उन्हें रसिकों से मिलने वाली वाहवाही में मिलती थी।
लगता तो बहुत ही अच्छा है और मैं अपने को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे इतना अवार्ड्स मिले। लेकिन सवाल एक है कि इतने अवार्ड मिलने से क्या मैं कोई बेटर म्यूजिशियन हो गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो वही म्यूजिशियन हूँ। लेकिन समय के अनुसार क्रमशः लोग पहचानते हैं, लोग किसी को ज़्यादा आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, ये तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो हर एक पुरस्कार कहिए अवार्ड कहिए बहुत ही आनंद देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद तो हमें मिलता है आम लोगों से। हमारा जो श्रोताएं हैं सारे दुनिया में, जब उनसे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एक जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में वाइब्रेशन, वो जब मिलती है, वो प्रेम, वो लगन, वो एप्रिसिएशन, वो सबसे बड़ा आनंददायक चीज़ है।
संगीत के पितामह माने जाने वाले पंडित रविशंकर ने 11 दिसंबर 2012 को अमेरिका के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। अपने लंबे जीवन काल में पंडित रविशंकर संगीत की एक ऐसी विशाल विरासत अपने पीछे छोड़ गए हैं जो भविष्य के संगीतज्ञों और रसिकों का मार्गदर्शन करता रहेगा। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी के वर्षांत कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे थे पंडित रविशंकर को। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके की उच्च स्तरीय इकाई जनरल काउंसिल में आज पार्टी सुप्रीमो जयललिता का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। समझा जा रहा है कि इसमें जयललिता की करीबी मित्र वी के शशिकला को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के उस भाषण को पक्षपातपूर्ण बताते हुए निंदा की है जिसमें उन्होंने इसराइल की आलोचना की थी। जर्मन मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि बर्लिन हमले के दौरान ट्यूनिशियाई व्यक्ति ने जिस ट्रक को भीड़ में घुसाया था उसका ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम कुछ दुकानों से टकराने के बाद ऑन हो गया जिससे और लोगों की जान बच गई। सीरिया में विद्रोही गुटों का कहना है कि वे तुर्की के साथ एक संघर्ष विराम समझौते के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मगर अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं। अनिल बैजल को दिल्ली का अगला उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने पिछले सप्ताह दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने वाले पति की हत्या की दोषी पाई गई एक महिला को माफी दे दी है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में बस इतना ही। शाम 7:30 बजे दिन भर लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को दीपक जसरोठिया के साथ विदा दें, नमस्कार।